Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये इससे ही ये एक विकास का सूत्र है, इसको तुम निभाओ, क्यों तुम ढो करके आए हो उसको, शास्त्र उसी जो कहता है और कृष्ण भगवान वही चीज को इशारा करते हैं। अर्जुन यदि छोड़ छाड़ के युधिष्ठिर छोड़ छाड़ के यदि चला जाता है सन्यासी बनने के लिए, जो कह रहा है वो इनको कैसे मार सकता हूं, जानकर क्या हाल होता है वो अर्जुन का। यदि जंगल में जाकर सन्यासी बनता तो कोई महापुरुष ने बहुत बढ़िया लिखा, कहा कि जंगल में भी वो क्या करता, पशु पक्षी फिर मारना शुरू करता। ऐसे सन्यासी बन के जंगल में चला जाता, युद्ध क्षेत्र से पलायन करता, तो जंगल में भी सन्यासी बन करके भिक्षा मांग कर खाना उसका आदत नहीं है, जाकर के घरों में जाकर के ओम नारायण हरि करके भिक्षा मांगना अर्जुन का आदत नहीं है, क्षेत्रीय की आदत नहीं होता है। वहां भी धनुष, किसी प्रकार के धनुष उठाएगा और फिर मारना शुरू करेगा। इसलिए अच्छा है कि तेरा ही धर्म तो निभा, यही तेरे लिए कल्याण है और यही विकास है। ये जो यहां जो दिखाया जा रहा है, इसको कोई बोलेगा कि आश्रम कर्म हम छोड़ छाड़ के हम तो बस ये करें, कभी उसका विकास नहीं होता है। आश्रम कर्म है कर्मयोगा, कर्मयोग है, कर्मयोग में स्थिर हो जाओ। कर्म करना सभी को मालूम है, लेकिन कर्म योग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात आई समय? देखो एक बढ़िया एक उदाहरण है कि कर्म एक जो है एक कोरा कागज होता है, कर्म एक कोरा कागज होता है, कागज टुकड़ा एक होता है। अब कागज में और एक प्रेम पत्र में, प्रेम पत्र भी कागज है और वो भी कोरा कागज है, वो भी कागज है और ये भी कागज है, लेकिन प्रेम पत्र में रुक्मिणी की एक पत्र जो है कृष्ण भगवान को भेजा है रुक्मिणी आखिर में, और ये कोरा कागज है, इन दोनों में कितनी फर्क है। जितना फर्क आप समझ रहे हैं उतना फर्क कर्म और कर्मयोग में है। कर्म एक कोरा है, करते जाओ, एक क्रिया, क्रियात्मक है, क्रिया है, क्रिया रूप है, करते जाओ जैसे सारा दुनिया कर रहे हैं। लेकिन उस कर्म में यदि कोई भावना जुड़ गई तो वो पत्र जो वो करा कागज, जैसे वो पत्र जो कागज और ये जो पत्र है, ये पत्र का इतनी कीमत है, आदमी पढ़ने के बाद जान आ जाती, जी लिया मैंने, हृदय में लगा करके रात रात निकाल देता है और फिर जो कहां मगन हो जाता है, खो जाता है प्रेम पत्र में, और वो कागज कागज ही होता है। ऐसे कर्म में कोई भावना जोड़ दो, योग उसको कहते हैं जो कर्म में जो बंधकत्व दोष है उस दोष को हटाने के लिए जो युक्तियां, जो भावना कर्म के साथ जोड़ा जाता है उस भावना को योग कहते हैं। नहीं समझे? कर्म में जो दोष है उस दोष को निवारण करने के लिए जो युक्तियां, जो भावना कर्म के साथ जोड़ा जाता है उसको योग कहते हैं, और कर्म के लिए होने के कारण वो युक्तियां, भावना, वो योग, तो उसको कर्म योग कहते हैं। और बाकी तो कर्म योग का अर्थ समाधि है, जोड़ना है, शब्द का अर्थ, व्याकरण अर्थ बहुत सारे हैं। कर्म में जो दोष है उसको हटाने के लिए जो भावना है, जो युक्तियां हैं, जोड़कर जो कर्म को करना पड़ता है तो उसको योग कहते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, करा कागज की उदाहरण दिया, अब उसके साथ भावना जुड़ गई, एक दो शब्द भावना से अब लिख दिया, अब वो उसका कीमत क्या हो गया, छोटा सा कागज टुकड़ा और एक नोट, नोट में क्या रखा है, एक थोड़ा सील्ड मार दिया, बस वो नोट हो गया है तो कागज टुकड़ा है, उसका कीमत कैसा, देखो क्या कीमत है उसका, हजार हजार, हाँ, कुछ भी खरीद कर सकते हो, एक कागज टुकड़ा है। कर्म और कर्म योग में इतनी फर्क होता है। एक 26 जनवरी 15 अगस्त को, हाँ, बाजार में एक कपड़ा है भाग झंडा, हाँ बाजार की एक कपड़ा है, उस वो कपड़ा जब हम झंडा में जब खड़ा कर देते हैं क्या कीमत है उसका। यदि रास्ता में यदि कोई उसे कुचल देगा उसे मार डालेगा उसको, कितने कपड़ा गिरा हुआ है, कोई कीमत नहीं किसका, लेकिन भाव जुड़ा हुआ है। मेरा ये देश का ये झंडा है, ये स्वाधीनता का ये प्रतीक है, वो भाव जुड़ा हुआ है। ऐसे कर्म में जब भाव जुड़ जाता है तो उसका कीमत आ जाता है, आपको पूरा उसका अंतगुण शुद्ध करा दे। उस कर्म कैसे छोड़ दोगे, उस कर्म कैसे त्याग कर दोगे। कर्म को कर्म योग बनाओ, कर्म को कर्म योग बनाओ, तो फिर अब कर्म के योग बनाने के लिए आप बना नहीं पा रहे हैं, तरह तरह के आसक्तियां हैं, हाँ नहीं नहीं हम छोड़ नहीं पाएंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, आप लगेगा हाँ वो तो खिंचाता नहीं होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, नहीं हो पाएगा हो, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन त्यागना कभी नहीं, कर्म को योग बनाना, यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा उपदेश है। तो ये कहा कि सत्यम च तीर्थ आश्रम कर्म योग, ये कर्म योग स्वर्गार्थम, हाँ ये स्वर्ग के लिए होता है, स्वर्ग मतलब एक अत्यंत सुख के लिए होता है, ठीक है, ये अत्यंत सुख के लिए होता है। अब देखो स्वर्गार्थ में वो, अब ये लिख रहे हैं कि अशुभम अध्रुवम च, फिर शुरू हो गया अभी है, ठीक, क्योंकि ये अशुभ है और अध्रुव है, परिवर्तन है, निश्चल नहीं है, हाँ अशुभ है, अशुभ किस लिए कि उसके दृष्टि से है परमात्मा है, मोक्ष दृष्टि से ज्ञानम ध्रुवम, और ज्ञान जो ध्रुव है, और शांति कर्म है, महार्थम हाँ महान के लिए, और महान मतलब परम पुरुषार्थ के लिए, परमात्मा के लिए, हाँ ठीक है परमार्थ के लिए। अब फिर यहाँ अब इतने सारे मैंने बताया, पूरा पानी में गया जैसे, वो बात नहीं है हाँ वहां तक। अब कोई पूछे कि स्वामी जी हम तो सीधे हम प्रोफेसर बन जाएंगे, 5-7 क्लास कोई पढ़ रहा है हाँ? अब जैसे मैंने कोई लड़की की बात कर रहा था कि सीधे हमको ये ज्ञान से सीधे पूछना है कि स्वामी जी कौन कौन बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, आप किसको जानते हैं, हम वो जानते हैं, तो फिर वो कब आते हैं, उनके साथ में कॉन्टेक्ट करता, पैसा है पैसा दे करके फिर खरीद कर घर में बुला, फिर घर में मैं पढ़ता। अब इससे कोई खरीद कर सकता है इस विद्या को, हाँ 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है, संन्यास आश्रम के लिए ही, क्योंकि ये सब चीज तो केवल ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर में प्रधान है, ज्ञान वैराग्य जिसमें प्रधान है तो ये पचा सकता है, इसे ज्ञान को पचा सकता है, और नहीं तो ये ऊपर में उड़ता जाएगा। और जो अच्छा आप बोलोगे कि ऐसे क्यों सुनाते हैं आप लोग से मूर्ख कहीं के हैं, बड़े बड़े मंडली से लोग आते हैं, ज्ञान विद्वान आते हैं, हम बुलाते हैं, अब वे लोग क्यों सुनाते हैं। लेकिन वेदांत श्रवण जो है वो ऐसी चीज नहीं है, वेदांत श्रवण क्या होता है कि सुन सुन के हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दोनों का ज्ञान होता है। जैसे आपने कहा अभी कि स्वामी जी सन्यास का धर्म है, तो ये ज्ञान हो रहा है किस से, इसी से तो हुआ ना। अभी आप यदि यहां नहीं आते, यहां पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं करते, आपको ज्ञान कैसे होता है। इसलिए आने से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो एक सत्संग जैसे हो जाता है, हो गया। अब फिर हमको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, क्या निभाना है क्या नहीं निभाना है, आपको धीरे धीरे होगा। और आप बोलेंगे फिर मैं आऊंगा फिर स्वधर्म में आऊंगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये हम तो ऐसे हम एजुकेटेड है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको ये तो जमेगा नहीं, हम तो सीधे ज्ञान की बात करेंगे, हम कुछ नहीं जानने वाले। आप इस धर्म को चुन नहीं सकते हो, सधर्म को चुनना नहीं होता है, स्वधर्म पहले से फिक्स है, चुनना नहीं होता है। कोई बोल दे कि मैं जो है मैं अच्छी कोई गोरी सुंदरी कोई माँ होगी उसके गोद में मैंने पैदा होगा, बता ये संभव है क्या, संभव है नहीं, क्यों नहीं है। कोई ये चुनने नहीं, नहीं ये लंगड़ी है और ये काली है उसकी गोद में पैदा नहीं होगा, मैं चलेगा हाँ आप बताइए तो कैसे संभव है। तो ये तो कई आगे की बात होगी। अब कोई बोल दे कि मैं ऐसे पैदा होके, जब क्योंकि पैदा होने से पहले उसकी माँ लंगड़ी तो लंगड़ी, काली तो काली, हाँ, और कोई नीची योनि वाली तो होगी, नीची योनि वाली होगी, चंडाल कुल की, चंडाल कुल होगी। अब ये पैदा होकर के वो कैसे करेगी, क्योंकि उससे पहले वो बन चुकी है, वो माँ पहले लंगड़ी है, पहले काली है, पहले चांडाल ली है, पहले बन चुकी है वो। अब ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं चलने वाला है कि कैसे ये काली होगी, कैसे चांडाल, अभी मैं इसको मां नहीं मानूंगी अभी। अब ये कैसे चांडाल का कर्म कैसे करती है, हमें ये नहीं करेंगे हम। इसलिए आप स्वधर्म को चुन नहीं सकते हैं, आप चुनना नहीं होता है, वो एक सहज धर्म है, एक आसानी है। अब इसको तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, अब हम जो जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, हम जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण में हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, अब इसको यदि हम छोड़ छाड़ कर भागने पलायन कर रहे हैं, तो फिर ये अपना आसक्ति, अपना अभिमान, फिर वो कर्म में वही अभिमान आएगा, फिर वही कर्तृत्व अभिमान आएगा, हाँ, फिर पलायन बाद आएगा, तो फिर फिर जो है भागना होगा। उसी कारण से ही अब छोड़ सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं छोड़ नहीं सकते, अब करना ही पड़ता है। हाँ देखिएगा, ज्ञानम ध्रुवम शांतिकर महार्थम यज्ञ ही देवत्वम आपनोति तपो भी ब्रह्मण पदम। यज्ञ से देवत्व को प्राप्त करता है, तप से तपो भी ब्रह्मण पदम, तप से ब्रह्म पद को, यहाँ ब्रह्म पद का अर्थ जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो बात नहीं करना है, वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, ये लेना है। दाने न विविधान भोगान, दान से विविध धर्म को प्राप्त कर, विविध भोग को प्राप्त करता है। अब बताइए कि यदि कोई अच्छा यदि भोग करने वाला यदि कोई चाहता है कि हमको ये भोग प्राप्त हो जाए, ये भोग प्राप्त हो जाए, चाहता है तो बढ़िया से दान करे, दान से सामर्थ्य आता है, प्राप्त होता है। आप 10 किलो नहीं, 10 डिब्बा, एक एक डिब्बा तो कम से 15 किलो डिब्बा घी होती है, एक एक डिब्बा, आप 10 डिब्बा, 20 डिब्बा, 50 डिब्बा, 100 डिब्बा दान कर सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच से घी ज्यादा खाएंगे ना तो भी आपको यूं खाना चला जाएगा, क्या शरीर का क्या हाल हो जाएगा। 4 चम्मच से इतनी 25 ग्राम से 50 ग्राम यदि खाएंगे घी एक ही टाइम भोजन के साथ खाएंगे तो बस गया काम से, लेकिन आप 100 डिब्बा 50 डिब्बा दान कर सकते हैं। इसलिए भोग करने की कभी प्रयास नहीं करना है, तो उसका एक महत्व कुछ अलग ही है। तब भी ब्रह्मण पदम दाने न विविधान भोगान, दान से विविध भोग, हाँ ठीक है, ज्ञानात मोक्षम अवाप्नियात, आखिर में ज्ञान से जो है मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त करता है ज्ञान से। दान से क्या प्राप्त करता है, तप से क्या प्राप्त करता है, यज्ञ से क्या प्राप्त करता है, सभी कहा आखिर में जो ज्ञान से मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है, ये कहा। ठीक है, धर्म धर्म रज्वा ब्रजेद ऊर्ध्वम, पाप रज्वा ब्रजेद अधः, धर्म की रसी से, रज्जू से, रसी से आप ऊर्ध्वम ब्रजेद, हाँ ऊपर की ओर जाए। अब कभी ऊपर को गया नहीं और नीचे नीचे से सब कुछ प्राप्त कर लेगा, बोलेगा चलेगा क्या वो, नहीं हमको ऊपर को जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सब नीचे नीचे रहते, हम सब कुछ कर सकते हैं, 10वीं पास नहीं है और बोले मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा, चलेगा क्या, 10वीं पास होना पड़ेगा। पहले स्वर्ग की जाने की सामर्थ्य नहीं है, हम वेदांत तो हम लोग पाठ करते हैं, महात्मा लोग करते हैं, स्वामी जी ये सब क्या सिद्धियां, इस सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बाबू एक सिद्धि, कोई छोटी सी सिद्धि तेरे में आ जाए, देखेंगे ना रोड साइड में एसटी में स्टेशन में बैठने वाला भिखारी वो बोलेगा मैं त्यागी हूं, नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं। हाँ, जैसे बुद्धदेव जैसे बोलेंगे, अशोक सम्राट अशोक बोलेंगे। हाँ, जैसे किसी के पास धन संपत्ति दौलत पदवी पैसा सब कुछ है, बहुत थोड़ी सी त्याग करता है तो अलग बात है। एक सिद्धि, छोटी सी सिद्धि प्राप्त करने के सामर्थ्य नहीं है। कोई संकल्प कोई करे और वो हो जाए, महात्मा है। यदि ज्ञानी तो मान रहे हो, ज्ञानी तो ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं करते, वो आसानी से उसकी सहज रूप से उसी सिद्धियां आ जाती है ज्ञानियों में। अब छोटी सी कोई संकल्प भी वो संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा है, और नहीं नहीं समझ जाए हमको ये सब इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हम तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, होता नहीं है। इसलिए योग दर्शन में वो विभूतिपाद में पहले कुछ सिद्धि भी प्राप्त करने का प्रयास कर ही आता है, उसका कम से कम झलक मिले आपको, तब जाकर क्या होगा कि साधना में आप टिक सकते हैं। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं, रोज आपको 200 रुपया नहीं मिलेगा, उस व्यापार में टिकेंगे कैसे आप? हाँ, अरे कितना सहन करेंगे आप? 100 रुपया 50 रुपया मिलेंगे घर द्वार को खिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है, आप उस व्यापार टिका कैसे टिक सकते हैं उस व्यापार? ऐसे आपको कोई चीज आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी सिद्धियां हैं, संकल्प होता है, कुछ होता है, तो वो कुछ हो जाने से आदमी सोचेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ मुझे मिल रहा है, फिर आगे थोड़ा कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अब किसी के जीवन में कुछ मिलता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे बातें हैं, केवल बातों बातों में मुंह से बोल जाना नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं, बोलने से भी नहीं होता है। कुछ चीज की कुछ प्राप्त भी करे और फिर छोड़े, फिर मालूम पड़ेगा। तो धर्म से क्या होता है कि ऊर्ध्वं व्रजेत, धर्म करे और ऊपर को जाए। पाप रज्जुः व्रजेत अधः, और पाप की रस्सी से फिर नीचे आ जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक, अच्छा। द्वयम् ज्ञानासीना चित्वा, ये दोनों को, यानी धर्म को भी और पाप को भी। तो मेरा ये कहना था कि पहले ऊपर भी जावे और नीचे भी आवे, दोनों का पहले भोग करे, करना करना ही है। फिर ये दोनों को जो है ज्ञान रूपी खड़ग से फिर जो छित्वा, फिर छेदन करके है? क्या जी, मेरा ये तर्क ठीक नहीं लग रहा है? धर्म नहीं किया और बोला यही मैं जो है धर्म को काट दूंगा, कोई जरूरत नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी इसलिए लिख रहे हैं, कम से कम तो पाप तो करे कम से कम, फिर उससे बचने के लिए तुझे ज्ञान होगा। पाप भी करना जानता ही नहीं है और सबको छोड़ छाड़ के बैठा है, कम से कम पाप करना भी सीखो कम से कम। फिर आदमी परेशान होकर उसे बचने के लिए फिर प्रयास करता है। द्वयम् ज्ञानासीना छित्वा, ज्ञान रूपी खड़ग से द्वयम् छित्वा, छेद करके विदेह शांतिम इच्छति। शरीर रहित शांति को प्राप्त करता है। अब ज्ञान से दोनों को जब छेदन कर देगा, किसी से पाप कर रहा था, किसी से धर्म कर रहा था, शरीर से तो कर रहा था ना? अब ज्ञान से फिर मैं शरीर नहीं हूं, जब ये उसको ज्ञान हो जाएगा फिर धर्म को छोड़ देगा, पाप को भी छोड़ देगा, दोनों को भी छोड़ देगा, और बचेगा क्या है? वही परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप जो चैतन्य तत्व, वही बचेगा। उसमें फिर जब स्थिर हो जाएगा फिर जो है शांति मृच्छति, फिर शांति को फिर वह प्राप्त करता है। अब कोई बताए कि हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम गायत्री जप नहीं करेंगे, हम तो सीधे ज्ञान प्राप्त, किसी ने ऐसी किया? और अब जो है बोल रहे हैं कि स्वामी जी पूरा केवल मैं सोता हूं ना, केवल बस स्त्रियों का ही कोई सपना होता है। अब जब नए नए आ रहे थे उस समय में यज्ञ करना, जप करना, गुरु के सानिध्य में रह करके इतना करना वो करना, अब सब छोड़ छाड़ के स्वतंत्र होकर रहना और संन्यास का दीक्षा लेके फिर जो है बस अब कपड़ा पहन लिया, शिखा काट लिया, जो देखा कि संन्यास महात्मा लेकर के फिर जो है उच्च आसन में बिठा देंगे, माला पहनाएंगे, बढ़िया से खिलाएंगे, दक्षिणा भी ज्यादा मिल जाएगा। अब बताओ कभी नहीं चले आओ, ये सब कर्तव्य करने के बाद ही फिर जो है शरीर को छोड़ छाड़ के शरीर रहित यानी शरीर को छोड़ छाड़ के फिर शांति में ही वो स्थिर हो पाएगा यानी शांति को प्राप्त कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः।